प्रस्तुत है आज का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे अमरीका को गाजा पट्टी का दीर्घकालिक मालिक बनते हुए देखते हैं। श्री ट्रंप ने ये घोषणा करके कई लोगों को चौंका दिया है कि वे चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों को अन्यत्र बसाने के बाद अमरीका गाजा पर कब्जा कर ले और इसे आर्थिक रूप से विकसित करे। गाजा पर कब्जा करने की अमरीकी योजना की अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा पर जोर तेज हो गया है। सऊदी अरब का कहना है कि वे फिलिस्तीनियों को उनकी भूमिका से विकसित करने के सभी प्रयास को अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के बिना इसराइल के साथ संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा। वहीं स्वतंत्र एमपी जो डैनियल का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई मतदाताओं के पास अब वास्तव में दो प्रमुख पार्टियों के अलावा अधिक विकल्प मौजूद हैं जिन्हें वे प्रेरणाहीन बताती हैं। नेशनल प्रेस क्लब में बोलते हुए एमपी का कहना है कि क्रॉस बेंचर्स ने सरकार को जलवायु, यहूदी विरोधी भावना और सोशल मीडिया प्रतिबंधों पर अधिक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फेडरल सरकार ने घोषणा की है कि वे सार्वजनिक अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं के वित्त पोषण यानी फंडिंग के लिए अतिरिक्त $1.7 बिलियन प्रदान करेगी। इस नए समझौते के तहत राज्य संचालित सार्वजनिक अस्पतालों में कॉमनवेल्थ का कुल योगदान 12% तक बढ़ जाएगा। सरकार का ये भी कहना है कि धन प्रतीक्षा सूची में कटौती करने, आपातकालीन कक्षों में प्रतीक्षा समय को कम करने और रैंपिंग के प्रबंधन में मदद के लिए इस राशि का उपयोग होगा। कॉन्ट्रोवर्शियल जमानत कानूनों को दोबारा लागू करने की घोषणा के बाद एबोरिजिनल कानूनी और मानवाधिकार समूह विक्टोरियन सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एबोरिजिनल महिला वेरोनिका नेल्सन की मौत की जांच के बाद जिन जमानत अपराधों को हटा दिया गया था उन्हें अब बदलावों की समीक्षा के हिस्से के रूप में फिर से पेश किया जा सकता है। वहीं गठबंधन यानी कोएलिशन चीनी स्वामित्व वाले एआई कार्यक्रम डीपसीक पर सरकार के प्रतिबंध के समर्थन में सामने आए हैं। विपक्षी विदेश मामलों के प्रवक्ता डेविड कोलमैन का कहना है कि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी को सरकारी उपकरणों और प्रणालियों पर अनुमति न देना सही कदम था। शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने उच्च शिक्षा के छात्र सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय संहिता के लिए संसद में कानून पेश किया है। ये विधेयक यानी कि बिल पहली बार उन मानकों के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा जिन्हें लिंग आधारित हिंसा यानी जेंडर्ड वॉयलेंस से निपटने के लिए विश्वविद्यालयों को अब पूरा करना होगा। बात करें भारत की तो दिल्ली में शाम करीब 5 बजे तक 58% मतदान दर्ज किया गया है। कुल मतदान का अंतिम आंकड़ा अभी भी आना बाकी है और साल 2020 में हुए विधानसभा चुनावों में 62% मतदान हुआ था। चुनाव परिणामों के अनुमान को लेकर अलग अलग एग्जिट पोल सामने आए हैं। अब तक जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं उनमें बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, वहीं आम आदमी पार्टी को दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में दिखाया गया है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।